चैतन्य महाप्रभु की डांट से बचाने के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने क्या किया, उसको बाहर ही रहने दिया। सबे स्वरूप गोसाई तार घड़े हाथ दिया, डेटा मारी पूरी बाहर राखी लेन लैया। मंदिर में वापस आकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे उस अबोध व्यक्ति को क्षमा कर दें। पुनः आसी पुनः प्रभु पाए करी ने विनय, अज्ञा अपराध क्षमा कर तेजु जाए। इस घटना के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु को परम संतोष हुआ। तब उन्होंने सारे भक्तों को दो पंक्तियों में दोनों ओर बैठ जाने को कहा। तबे महाप्रभु रमने संतोष हईला, सारी करी दुई पासे सबारे बसैला। तब महाप्रभु स्वयं बीच में बैठ गए और सभी तरह के तिनके बालू के कण और गंदी वस्तुएं चुनने लगे। देखा, भगवान स्वयं लीडर हैं, वो बीच में बैठे हैं और भक्तों को दिखा रहे हैं। तो भगवान जैसा कर रहे हैं, चारों तरफ से भक्त लोग देख रहे हैं, तो वो भी अपने अपने स्थान में क्या कर रहे हैं, तिनके बालू और कण चुन रहे हैं, एक एक उठा रहे हैं। आपने बसिया माजे आपना रहते, तृण कांकर कुटा लागेला कुड़ाई ते। तिनके और बालू के कण सुनते हुए महाप्रभु ने कहा, मैं हर एक के कूड़े को एकत्र करूंगा और जिसका कूड़ा कम होगा उससे कहूंगा कि वह जुर्माने के रूप में क्या करे, मीठी रोटी और मीठा चावल दे। के कहते कूड़ा है सब एकत्र करिन, जार अल्पता रचाई पीठा पाना लई। इस तरह गुंडीचा मंदिर के सभी कमरे पूरी तरह स्वच्छ हो गए। सारे कमरे ठंडे और स्वच्छ थे, मानो निर्मल और शांत मन हो। ए मत सब है पूरी करीला शोधन, शीतल है निर्मल है कैला जिन निज मन। जब सारे कमरों का पानी बैठक से होकर निकाला गया तो लगा कि नई नदी समुद्र से मिलने जा रही है। बैठक का मतलब ऐसा स्थान जहाँ की ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो उस स्थान में बहुत पानी भरा था, तो वहां से जब पानी निकला जो इकट्ठा हुआ था, तो कैसा लगा, किसे एक नई नदी समुद्र से मिल रही है। प्रणाली का छाड़े जदी पानी बहाइल, नूतन नदी जन समुद्र मिलिल। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गईं, किंतु कोई यह नहीं बता सकता कि ये सब कैसे हुआ। ए मत पूरे द्वारे आगे पथ जत, सकल सोधिल तहा के बरनी बेकत। महाप्रभु ने नरसिंह मंदिर की भी भीतर और बाहर से सफाई की। अंत में उन्होंने कुछ मिनट विश्राम किया और तब वे नाचने लगे। नृसिंह मंदिर है भीतर बाहर है सुधिल, क्षण के विश्राम करी नृत्य आरम्भिल। तात्पर्य में प्रभुपा लिखते हैं कि नरसिंह मंदिर गुंडीचा मंदिर से बाहर ही एक सुंदर मंदिर है। इस मंदिर में नरसिंह चतुर्दशी के दिन बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। नवद्वीप में भी नरसिंह मंदिर है, जहाँ पर यही उत्सव मनाया जाता है, जैसा कि मुरारी गुप्त ने अपनी पुस्तक चैतन्य चरित में लिखा है। हाँ, अब आगे क्या हुआ कि सारे भक्तों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चारों ओर संकीर्तन किया और महाप्रभु एक उन्मत्त सिंह के समान बीच में नाचने लगे। सारा दिखे भक्त गण करे न कीर्तन, मध्य करे प्रभु मत सिंह सम। आज जब चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते हैं तो क्या होता है, पसीना कप कपी विवर्णता आंसू हर्ष और हुंकार प्रकट होने लगे। उनकी आंखों के अश्रुओं ने उनके शरीर को गीला कर दिया और केवल शरीर को गीला नहीं किया, उनके समक्ष खड़े लोगों के शरीरों को भी गीला कर दिया। स्वेद कंपे वैवर्ण अश्रु पुल के हुंकार, निज अंग धोई आगे चले अश्रुधाम। इस तरह महाप्रभु ने अपनी आंखों के आंसुओं से सारे भक्तों के शरीरों को धो डाला। आंसू इस तरह गिर रहे थे मानो सावन मास के बादल हों। तो भगवान के अश्रु कैसे गिरते हैं, जैसे पिचकारी हो, ऐसे बहते नहीं है जैसे सामान्य आंसू बहते हैं। इसलिए पिचकारी की तरह जब आंसू जो है बाहर आंखों के बाहर जब गिरते हैं तो आसपास के सब लोग गीले हो जाते हैं। शारीर के भक्त अंग कैला प्रचलन, श्रवणेर मेघ जिन करे बरे सन। महान और जोर जोर से उच्चरित होने वाले संकीर्तन से आकाश गूंज उठा और महाप्रभु के कूदने और नाचने से पृथ्वी हिलने लगी। देखा, पृथ्वी आकाश दोनों प्रभावित हैं। आकाश आवाज से गूंज रहा है और पृथ्वी महाप्रभु के कूदने से हिल रही है। महा उच्च संकीर्तन आकाश से भरिल प्रभु उद्दंड नृत्य भूमि कंप हिलन। महाप्रभु को स्वरूप दामोदर का संकीर्तन बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि जोर जोर से संकीर्तन होता है उनका। अतएव जब स्वरूप दामोदर गाते तो श्री चैतन्य महाप्रभु नाचते और हर्ष से ऊपर उछलते थे। स्वरूप रे उच्च गान प्रभु रे सदा भाई आनंदे उदंड नृत्य करे गौरे राय। महाप्रभु इस तरह कुछ समय तक कीर्तन करते और नाचते रहे। अंत में परिस्थिति को समझ बूझ कर वे रुक गए। ऐ माते कते क्षण नृत्य ये करिया विश्राम करीला प्रभु समय बूझिया। तब महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य के पुत्र श्री गोपाल को नाचने का आदेश दिया। आचार्य गोसाईर पुत्र श्री गोपाल नाम नृत्य करी ते तारे आज्ञा दिल गौरे धाम। अब क्या हुआ, श्री गोपाल को आदेश मिला तो प्रेम आवेश में नाचते हुए श्री गोपाल मूर्छित हो गया और अचेत होकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रेमावेश नृत्य करी हैला मूर्छिते अचेतन हैया ते है पड़िला भूमि ते। अब जब श्री गोपाल मूर्छित हो गया तो अद्वैताचार्य ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। ये देखकर किसकी सांस नहीं चल रही है वे अत्यंत चिंतित हो उठे। आज से व्यस्ते आचार्य सारे कैल कोले श्वास रहे ते देखी आचार्य हैल विकले। अद्वैताचार्य और अन्य लोग भगवान नरसिंह के नाम का उच्चारण कर करके जल छिड़कने लगे। उस चरण की हुंकार इतनी तेज थी कि सारा ब्रह्मांड हिलने जैसा लगा। नृसिंह रे मंत्र पड़ी मारे जल छाटी हुंकारे रे संदे ब्रह्मांड जाए फाटी। जब श्री गोपाल को कुछ समय तक होश नहीं आया तो अद्वैताचार्य और अन्य भक्तगण क्रंदन करने लगे। अनेक करिल तबु नाहे चेतन आचार्य कांदिन कांदे सबे भक्त गण। तब महाप्रभु ने श्री गोपाल की छाती पर अपना हाथ रखा और जोर से बोले गोपाल उठो। तबे महाप्रभु तार बुके हस्ते दिल उठे गोपाल बलि उच्च स्वर कहिल। हाँ, अब क्या हुआ, देखा कितना आश्चर्य। जो ही गोपाल ने महाप्रभु की वाणी सुनी उसे तुरंत चेत हुआया। अतः सारे भक्त हरि का नाम ले लेकर नाचने लगे। सुनित ही गोपाल हरि ले चेतन हरि बलि नृत्य करे सर्व भक्त गण। अब विश्राम करने के बाद महाप्रभु और सारे भक्त क्या करते हैं, स्नान करने चले गए। तबे महाप्रभु क्षण एक विश्राम करिया स्नान करी बारे केला भक्त गण लिया। स्नान के बाद महाप्रभु ने सरोवर के किनारे खड़े होकर सूखे कपड़े पहने फिर पास ही के मंदिर में स्थित नरसिंह देव को नमस्कार करके बगीचे में आए। तेरे ओठे परेन प्रभु सुसके बसन नरसिंह देवे नमस्कारी गेला उपेवन। उस बगीचे में महाप्रभु अन्य भक्तों के साथ बैठ गए। सभी बाणी नाथ राय सभी प्रकार के प्रसाद लेकर आए। उद्याने बसीला प्रभु भक्त गण लिया तबे बाणी नाथ आईला महाप्रसाद लिया। कितना अच्छा ये भगवान का कार्यक्रम है। सवेरे उठ करके मंदिर की सफाई की और उसके बाद कुछ विश्राम किया, फिर नृत्य किया, फिर कुछ विश्राम किया, फिर स्नान किया, अब प्रसाद शुरू हुआ। अब काशी मिश्र और एक भक्त है तुलसी जो मंदिर की देखरेख करने वाले थे, दोनों इतना अधिक प्रसाद लेकर आए जो 500 व्यक्तियों के खाने लायक था। इस प्रसाद में क्या था, चावल रोटियां खीर और तरकारियां थी। इन्हें देखकर महाप्रभु अत्यंत संतुष्ट हुए। सत्य अन्य पिठा पाना सब पठाइन देखी महाप्रभु मने संतोष है। महाप्रभु के पास उपस्थित भक्तों में परमानंद पुरी ब्रह्मानंद भारती अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु थे। पुरी गोसाई महाप्रभु भारती ब्रह्मानंद अद्वैत आचार्य आर्य प्रभु नित्यानंद। वहां पर और भी भक्त थे, कौन? आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास ठाकुर, गदाधर पंडित, शंकर, नंदन आचार्य, राघव पंडित और वक्त सभी उपस्थित थे। आचार्य रत्न, आचार्य निधि, श्रीवास, गदाधर, शंकर, नंदन आचार्य, आर्य, राघव, वक्रेश्वर। महाप्रभु की आज्ञा पाकर सार्वभौम भट्टाचार्य बैठ गए। श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके सारे भक्त कहाँ बैठे? चबूतरे पर, और वो चबूतरा लकड़ी का बना हुआ है, इसे पिंडार कहते हैं। प्रभु आज्ञा पाया वैसे आपने सार्वभौम पिंडार ऊपर प्रभु वैसे लिया भक्तगण। इस तरह सारे भक्त एक दूसरे के पीछे पंक्ति बनाकर भोजन करने के लिए बैठ गए। तारे तले करी अनुक्रम उद्यान भरी वैसे भक्त करी ते भोजन। श्री चैतन्य महाप्रभु देखो पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं? बार बार हरिदास हरिदास पुकार रहे हैं, और हरिदास दूर खड़े हैं, इसलिए वो हरिदास अब दूर से बोले। हरिदास बले प्रभु डाके गण गण दूरे रही हरिदास करे निवेदन। अब हरिदास क्या कहते हैं? महाप्रभु आप भक्तों के साथ भोजन ग्रहण करें, क्योंकि मैं निंदनीय हूँ अतएव आप लोगों के बीच में नहीं बैठ सकता। देखा कितनी विनम्रता है हरिदास ठाकुर की, क्योंकि मुसलमान परिवार में पैदा हुए इसलिए अपने को निंदनीय कह रहे हैं। भक्त संगे प्रभु करुण प्रसाद अंगीकार ए संगे बसीते योग्य नहीं मुही छान। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं कि गोविंद जो आपका सेवक है बाद में मुझे दरवाजे के बाहर प्रसाद ले जाएगा। महाप्रभु ने उनके मन की बात जानकर फिर से नहीं पुकारा। तो हरिदास ठाकुर की भावना क्या है? कुत्ते जैसे, कुत्ता जैसे दूर रहता है, और जब आप भोजन कर चुके हैं तो फिर वो आता है, जो जूठा बचा है वो खाने के लिए आता है। ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि जब आप खा लेंगे तो फिर जो बचेगा वो मुझे गोविंद दे देंगे। पाछे मोरे प्रसाद गोविंद दिवे बही द्वारे मन जानी प्रभु पुन न बलि ले तारे। स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जगदानंद, दामोदर पंडित, काशीश्वर, गोपीनाथ, वाणीनाथ और शंकर ने प्रसाद बांटा, और भक्तगण बीच बीच में हरि नाम का उच्चारण करते जा रहे थे। स्वरूप गोसाई, जगदानंद, दामोदर, काशीश्वर, गोपीनाथ, वाणीनाथ, शंकर परिवेशन करे ताहम ए सात जन मध्य मध्य हरि ध्वनि करे भक्त गण। जिस तरह श्री कृष्ण ने पहले जंगल में भोजन किया था, महाप्रभु को वही लीला याद हो उठी। हाँ देखा, भक्तों के साथ भोजन कर रहे हैं तो भगवान को कृष्ण अवतार की जो लीला है वो याद आई। बोले न भोजन कृष्ण पूर्वे जैसे कैलाम सही लीला महाप्रभु मन स्मृति हैलाम। श्री कृष्ण की लीलाओं के स्मरण मात्र से श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेमावेश हुआया, किंतु समय और परिस्थिति को देखते हुए वे कुछ कुछ धीर बने रहे। चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया जब भोजन हो रहा है तो भोजन के बीच में अगर कुछ उनको प्रेमावेश होगा तो फिर भोजन में बाधा पड़ेगी, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आवेश को संभाल लिया। यद्यपि प्रेमावेश प्रभु हैला अस्थिर समय बोझिया प्रभु हैला किछु धीर। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब क्या कहते हैं भगवान कि मुझे साधारण तरकारी दो और भक्तों को परोसो क्या पीठा खीर अमृत गुटिका अच्छे अच्छे व्यंजन परोसो, और मुझे क्या दो खाली सब्जी दो साधारण तरकारी दो। प्रभु का ए मोरे दे लापरा व्यंजने पीठा पाना अमृत गुटिका दे भक्त गणे। भगवान में देखो कितना त्याग है कि भक्तों को कहते हैं, भक्तों के लिए कहते हैं कि अच्छे से भोजन दो और मुझे केवल साधारण तरकारी दो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सब कुछ जानने वाले हैं अतः वे जान गए कि किस व्यक्ति को कौन व्यंजन पसंद है, इसलिए उन्हें स्वरूप दामोदर के हाथों से उन व्यंजनों को भरपेट परोसा परोसवाया। चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर को समझ कहते हैं इनको ये दो इनको ये दो, क्यों? भक्त
जिन भक्त को जो अच्छा लगता है वो तो नहीं मांगते, उन्हें संकोच होता है, और भगवान जानते हैं इनको ये अच्छा लगता है, तो वही चीज उनसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी से परोसवाते हैं। इस प्रकार से सब भक्तों को भरपूर भोजन खिलवाया। सर्वज्ञ प्रभु जाने जारे जय भाई, तारे तारे से देव आए स्वरूप द्वाराए। अब देखो चैतन्य महाप्रभु अपने लिए तो कुछ अच्छा भोजन नहीं खा रहे हैं, लेकिन जगदानंद प्रसाद वितरण करने आए, उन्होंने अकस्मात सर्वश्रेष्ठ व्यंजन महाप्रभु के पत्तल में परोस दिया। देखा कितना साहस, चैतन्य महाप्रभु के आदेश के विरुद्ध कोई कुछ नहीं करने का साहस करता। इन जगदानंद जानते हो कौन है, सत्यभामा है। सत्यभामा जल्दी जुड़ जाती थी कृष्ण से, और कृष्ण मनाते रहते थे, तो जगदानंद अगर जुड़ जाए गुस्सा हो जाए तो 3 दिन भोजन नहीं करेंगे। चैतन्य महाप्रभु डरते हैं जगदानंद से, इसलिए जगदानंद बेड़ाए परिवेशन करीते, प्रभुर पाते भाले द्रव्य देने आचंबिते। जब महाप्रभु के पत्तल में इतना अच्छा प्रसाद परोसा जगदानंद ने, तो बाहर से तो गुस्सा दिखाई दिए, किंतु फिर भी जब किसी न किसी बहाने से उनकी पत्तल पर व्यंजन परोस दिए जाते तो महाप्रभु को बहुत संतोष होता है। अंदर से प्रसन्न होते हैं महाप्रभु, जब बाहर से कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं नहीं लूंगा। यद्यपि देले प्रभु तारे करे रोशन, भले छले तबो देन दिले से संतोषन। जब इस तरह भोजन परोस दिया जाता तो महाप्रभु कुछ समय तक उसे देखते रहते, किंतु जगदानंद के भय से वे उसमें से कुछ न कुछ खा रहे थे। जगदानंद का बहुत डर है कि गुस्सा न हो जाए, तो जगदानंद का परोसा हुआ जरूर चैतन्य महाप्रभु को खाना पड़ता। पुनरापि सही द्रव्य करे निरीक्षण, तारे भय प्रभु किचु करे न भक्षण। महाप्रभु जानते थे यदि जगदानंद द्वारा परोसा गया भोजन नहीं खाएंगे तो वे उपवास करने लगेंगे, इस भय से महाप्रभु ने उनके द्वारा दिए गए प्रसाद में से कुछ अंश खा लिया। न खाए ले जगदानंद करीबे उपवास, तार आगे किछु खान मन एई प्रासन। तब स्वरूप दामोदर गोसाई कुछ उत्तम मिठाइयां ले आए और महाप्रभु के सामने उन्हें अर्पित किया। स्वरूप गोसाई भाल मिश्र प्रसाद लिया, प्रभु के निवेदन करे आगे दांडाइया। अब स्वरूप दामोदर गोस्वामी कैसे चैतन्य महाप्रभु खिलाते हैं, कहते हैं इस महाप्रसाद में से थोड़ा लीजिए और देखिए भगवान जगन्नाथ ने कैसे प्रसाद ग्रहण किया है। ऐसा भोग जगन्नाथ जी ने भोग प्राप्त किया है तो इसको आप जरा चखो। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु को खाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने इस ढंग से कहा स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने। हे महाप्रसाद अल्प कर आस्वादन, देखे जगन्नाथ कैसे कर या छिन्न भोजन। ये कहकर स्वरूप दामोदर गोसाई ने महाप्रभु के सामने कुछ भोजन रख दिया और महाप्रभु ने उसे स्नेह वश खा लिया। इस तरह से हम देखते हैं कि ये दो जो विशेष भक्त हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी और जगदानंद, इनकी हिम्मत है कि चैतन्य महाप्रभु को विशेष प्रसाद जो सुंदर और स्वादिष्ट है वो भोजन करा सकते हैं। स्वरूप दामोदर तथा जगदानंद ने महाप्रभु को बारंबार वही भोजन दिया, इस तरह उन्होंने महाप्रभु के साथ स्नेह व्यवहार किया, ये अत्यंत असामान्य बात थी। ए मत दुई जन करे बार बार, विचित्र ए दुई भक्तेर स्नेह व्यवहार। महाप्रभु ने सार्वभौम को अपने बाएं बैठा लिया। सार्वभौम स्वरूप दामोदर तथा जगदानंद का व्यवहार देख देख कर हंसने लगे। सार्वभौम प्रभु वासाइन छेन वाम पासे, दुई भक्तेर स्नेह देखी सार्वभौम हासे। महाप्रभु सार्वभौम को भी उत्तम भोजन देना चाहते थे, अतः उन्होंने परोसने वाले से बार बार उनकी पत्तल में उत्तम भोजन परोसने को कहा। सार्वभौम देयान प्रभु प्रसाद उत्तम, स्नेह करे बार बार कराने भोजन। गोपीनाथ आचार्य ने भी उत्तम भोजन लाकर मधुर वचन कहते हुए सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रदान किया। गोपीनाथ आचार्य उत्तम महाप्रसाद आनी, सार्वभौमे दिया कहे सुमधुर बाणी। अब गोपीनाथ आचार्य ने सार्वभौम भट्टाचार्य को उत्तम भोजन परोसने के बाद क्या कहा, जरा विचार करें कि सार्वभौम भट्टाचार्य का पूर्ववर्ती संसारी आचरण कैसा रहा होगा। जरा विचार करें किस समय में किस तरह दिव्य आनंद भोग रहे हैं। कहा भट्टाचार्य रे पूर्व जन व्यवहार, कहा परमानंद करा है बेचैन। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया, मैं पहले अल्प बुद्धि तारके था, फिर भी आपकी कृपा से मुझे ये भक्ति का ऐश्वर्य प्राप्त हो सका है। सार्वभौम कहे आमी तार के कह को बुद्धि, तुम्हार प्रसाद मोर ए संपत सिद्धि। और सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त इतना दयावान कौन हो सकता है। उन्होंने एक कौवे को गरुड़ बना दिया है। देखा सार्वभौम भट्टाचार्य क्या कहते हैं कि मैं पहले कौवा था, अब चैतन्य महाप्रभु ने मुझे क्या बना दिया है, गरुड़ बना दिया है। भला इतना दयावान और कौन हो सकता है। महाप्रभु बिना के हैं नाहे दयामय, ताके रे गरुड़ करे ऐसे कौन है। हाँ, तार्किक रूपी प्यारों के साथ में भौम हो करता था। देखा सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि मैं पहले प्यार था, भौम हो करता था, यानी जितने प्रवचन थे मायावादी प्रवचन वो क्या है, प्यारों का या कुत्तों का भौम है। अब मैं उसी मुख से कृष्ण और हरि नामों का उच्चारण कर रहा हूँ। तार्किक श्रे गाले संगे देव भेव करे, श्री मुख एबे सदा कही कृष्ण हरि। कहा मैं अभक्त तार्किक शिष्यों की संगति में रहता था, कहा अब मैं भक्तों के संग रूपी अमृत के समुद्र में डूबा हुआ हूँ। कहा महिर मुख तार्किक के शिष्य गण संगे, कहा ए संग सुधा समुद्र तरंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, देखिए चैतन्य महाप्रभु कितना सम्मान देते हैं। कहते हैं तुम अपने पूर्व जन्म में कृष्ण भावनामृत में रहे थे, तुम कृष्ण से इतना प्रेम करते हो कि तुम्हारी संगति से हम लोगों में कृष्ण भक्ति उत्पन्न हो रही है। प्रभु का है पूर्व सिद्ध कृष्ण तोमार प्रीति, तोमा संगे आमा सबार हैले कृष्ण मती। इस तरह तीनों लोगों के भीतर श्री चैतन्य महाप्रभु के अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य व्यक्ति नहीं जो भक्तों की महिमा को बढ़ाने की इच्छा रखता हो और उन्हें संतोष प्रदान करता हो। भक्ते महिमा बढ़ाई ते भक्ते सुख दीते, महाप्रभु बिना अन्य नहीं फ्री जगते। तब महाप्रभु ने जगन्नाथ जी पर चढ़ाया हुआ सारा पीठा पाना लेकर हर भक्त को बुला बुला कर उनमें वितरित कर दिया। तब ए प्रभु प्रत्येक भक्तेर नाम लिया, पीठा पाना देओ आयल प्रसाद करियम। श्री अद्वैताचार्य पास पास बैठे और जब प्रसाद बांटा गया तो एक दूसरे से वो क्रीड़ा कलह लग गए। क्रीड़ा कलह मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं, तो देखने में लगता है एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे की प्रसन्नता थी। अद्वैत नित्यानंद बसी आखे एक छाई, द्विजन क्रीड़ा कलह लागे तथाई। इसके बाद सारे वैष्णवों का नाम ले लेकर महाप्रभु ने महाप्रसाद वितरित किया, मानो उसमें अमृत छिड़का गया हो। उस समय अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु की जो क्रीड़ा कलह थी वो अधिक अधिक रोचक लग रही थी। तबे प्रभु सर्व वैष्णवेर नाम लिया, महाप्रसाद देन महा अमृत सिंचियम। भोजन करने के बाद सारे वैष्णव हरि हरि की ध्वनि करते हुए उठ खड़े हुए, ये हरि ध्वनि स्वर्ग लोक और मर्त लोक में भर गयी। भोजन करे उठे सबे हरि ध्वनि करी, हरि ध्वनि उठिल सब स्वर्ग मर्त भरी। इसके बाद महाप्रभु ने अपने सारे भक्त संगियों को अपने हाथ से फूल मालाएं और चंदन लेप प्रदान किया। सबे महाप्रभु सब निजे भक्त गणे, सबा कारे श्रीहस्ते दिला माले चंदने। प्रसाद वितरण में लगे स्वरूप दामोदर आदि सात भक्तों ने इसके बाद कमरे के भीतर भोजन किया। सबे परिवेशक स्वरूप आदि सात जन, गृह भीतरे कैला प्रसाद भोजन। फिर क्या हुआ, गोविंद ने महाप्रभु द्वारा छोड़े गए जूठन को सावधानी से रख दिया और बाद में इसमें से कुछ अंश हरिदास ठाकुर को ला कर दिया। प्रभु रे अवशेष गोविंद राखे ले धरिया के अन्न हरिदास किछु दिल लैया। श्री चैतन्य महाप्रभु के जूठन को बाद में उन भक्तों में विस्तृत किया गया जिन्होंने याचना की और फिर जो कुछ बचा उसे स्वयं गोविंद ने खाया। भक्त गण गोविंद पास किछु मांग नील ते प्रसादन गोविंद आपानी पाइल। परम स्वतंत्र भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। गुंडीचा मंदिर की धुलाई और सफाई उसमें से केवल एक लीला है। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु करे नाना खेला दोया पाखाला नाम कैला एक लीला। इस तरह से हमने गुंडीचा मंदिर की सफाई का जो प्रसंग है चैतन्यचरितामृत से पढ़ के सुनाया। अब एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी गुंडीचा मंदिर की सफाई के विषय में तात्पर्य लिख रहे हैं और श्रील भक्ति सिद्धांत शशि ठाकुर की बात बताते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह शुद्ध और शांत हृदय में भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। यदि कोई ये चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में कहा है, क्या कहा है, ये तो दर्पण मार्जनम। इस अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, हृदयंत सोह भद्राणी, हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हर एक को महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है कि वह हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। इसका परिणाम यह होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा, ये तो दर्पण मार्जनम। इसी तरह श्रीमद् भागवत में भी 1:2:17 ये पुष्टि हुई है, श्रृणमताम तो कथा कृष्णाम पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंत सोह भद्राणी विधुनोति सुरक्षताम। श्री कृष्ण जो प्रत्येक हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के हृदय की है, वे उस भक्त के हृदय में भौतिक भोग की इच्छा को दूर करते हैं जो उनके उन संदेशों का आस्वादन करता है जो ठीक से सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होते हैं। यदि भक्त चाहता है कि उसका हृदय स्वच्छ बने तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। श्रृणमताम तो कथा कृष्ण, ये सीधी सादी विधि है। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे क्योंकि वे पहले से ही वहाँ विराजमान है। कृष्ण चाहते हैं कि वे प्रत्येक हृदय के भीतर रहते रहें और वे निर्देश देना चाहते हैं, किंतु मनुष्य को अपना हृदय उसी तरह स्वच्छ रखना चाहिए जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को स्वच्छ बनाया था। अतएव भक्त को अपना हृदय उसी तरह निर्मल करना होता है जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को निर्मल बनाया था। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्ध हो सकती है। यदि हृदय में कूड़ा करकट, बालू के कण या धूल भरी हो, ये सब क्या है, अन्याभिलाषिता, तो उसमें भगवान को नहीं बिठाया जा सकता। हृदय को स्वच्छ करना होगा। किस चीज से? कर्म से, ज्ञान से, योग से और ध्यान से प्राप्त समस्त भौतिक मंतव्यों से स्वच्छ रखना होगा। जैसा किसी रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माजनावृतम। दूसरे शब्दों में किसी तरह का बाहरी मंतव्य नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को भौतिक उन्नति और ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, अच्छा ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, सकाम कर्म तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए। ये सारे कार्य भगवान के रागानों के प्रेम की सहज वृद्धि के विरुद्ध हैं। जो ही हृदय में ये उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है। अतः कृष्ण के विराजने के लिए वो स्थान अयोग्य हो जाता है। अपने हृदय को शुद्ध रखे बिना उसमें हम भगवान की उपस्थिति की अनुभूति नहीं कर सकते। भौतिक इच्छा की व्याख्या है क्या? भौतिक जगत को डटकर भोगने की इच्छा, ये आधुनिक भाषा में इसे क्या कहते हैं, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास की अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर के कूड़ा करकट के समान मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता है तो उसका हृदय विचलित रहता है। नरोत्तम दास ठाकुर ने ठीक ही कहा है, संसार बिसाना ले दीवाने सी ही आज ले जुड़ाई के न कैनु उपाय। दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य की चेष्टा भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। भौतिक भोग के अंतर्गत पुण्य कर्म, दान, तपस्या, स्वर्ग लोक प्राप्त करना तथा भौतिक जगत में सुख पूर्वक जीवन यापन करना ना? ये सब चीजें हैं। आधुनिक भौतिक लाभ भौतिक कलमश रूपी धूल के समान है। जब सकाम कर्म के चक्रवात से ये धूल उड़ती होती है तो ये हृदय को आच्छादित कर देती है। इस तरह हृदय रूपी दर्पण धूल से ढक जाता है। पुण्य तथा पाप कर्म करने के लिए अनेक इच्छाएं होती हैं, किंतु लोग यह नहीं जानते कि उनके हृदय जन्म जन्मांतर तक मलिन क्यों रहते हैं। जो व्यक्ति सकाम कर्म की इच्छा नहीं छोड़ पाता उसे भौतिक कलमश रूपी धूल से ढका हुआ समझा जाता है। कर्मी लोग क्या सोचते हैं, सकाम कर्मों के फल को दूसरे कर्म से काटा जा सकता है। ये एक भूल है। यदि वह ऐसी भावना के बहकावे में आता है तो वह अपने ही कर्म द्वारा ठगा जाता है। ऐसे कर्मों की तुलना हाथी के स्नान से की जाती है। हाथी कितनी अच्छी तरह से क्यों ना स्नान करे, नदी से बाहर निकलते ही वह अपने सारे शरीर पर धूल डाल लेता है। यदि कोई अपने विगत कर्मों का फल भोग रहा है तो वह पुण्य कर्म करके उन्हें काट नहीं सकता। भौतिक योजनाओं के द्वारा मानव समाज के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता है। केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही कष्टों को दूर किया जा सकता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करके भगवत भक्ति में अपनों को लगाता है, भगवान का कीर्तन करता है और उनकी महिमा का श्रवण करता है, तभी उसका हृदय स्वच्छ होना शुरू होता है, स्वच्छ होना शुरू होता है।
धन्यवाद। श्री गुंडीचा मार्जन महोत्सव के जगत गुरु शिला